कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर मान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर मान सारी खताएं जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं और आज भी हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों न्यायियों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने शिमशोन को नाजीर होने के लिए चुना और उसने किस रीति से परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया और वह नाश हुआ। मित्रों, इसराइल ने परमेश्वर की दृष्टि में सातवीं बार घृणित काम किया और परमेश्वर ने उन्हें पलिस्तियों के अधीन कर दिया। वे 40 वर्ष तक पलिस्तियों के अधीन रहे और परमेश्वर, जो हमारा दयालु प्रभु है, उससे उनका दुख नहीं देखा गया और उसने शिमशोन को जन्म से पूर्व चुनकर नाजीर ठहराया था। परमेश्वर शिमशोन के हाथों इसराइल को मुक्ति दिलाना चाहता था, परंतु वह परमेश्वर के उद्देश्य से चूक गया और उसका अंत दुखदायी हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उसे 20 वर्ष का समय दिया, परंतु उसने जो भी किया वह अपने जीवन के अंतिम पल में किया कि उसने पलिस्ती राजाओं को 30,000 मनुष्यों के साथ लेकर मर गया। मेरे मित्रों, उन दिनों में जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही काम करता था। आज हम अध्याय 17 से 20 में देखेंगे कि इसराइल में धर्म संबंधित अव्यवस्था दिखती है और जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही काम करता था। अब मीका नामक एक मनुष्य ने मूर्तियां बनवाकर अपने घर में देवालय की स्थापना की। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतिहास का वही तर्क चल रहा है, इतिहास का चक्र चल रहा है और इसराइल आशीषों में है, वही परमेश्वर की उपासना कर रहा है, परंतु शीघ्र ही वह परमेश्वर से दूर होकर दुष्टता करते हैं और वे अपनी इच्छा पर चलने लगते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड स्वरूप दासत्व में कर देता है। मित्रों, कष्टों के कारण वे परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और मुक्ति के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से उन्हें मुक्ति दिलाता है और वे पुनः आशीषों का आनंद लेने लगते हैं और परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तब वे फिर से पाप में घिरकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इसराइल ने 7 बार परमेश्वर को त्याग दिया, अर्थात परमेश्वर से अलग हुए। इससे हमें इतिहास का नीति शास्त्र समझ में आता है। प्रत्येक राष्ट्र जिसका पतन हुआ है उसके पतन के तीन चरण हैं। पहला धार्मिक अभक्ति और दूसरा नैतिकता का पतन और तीसरा राजनीतिक अव्यवस्था। मेरे प्रियो, पतन का आरंभ मंदिर से होकर परिवार में प्रवेश करता है और अंत में राष्ट्र में व्याप्त हो जाता है। किसी भी राष्ट्र का पतन ऐसे ही होता है। इस बार ईश्वर त्याग का आरंभ दान के गोत्र से हुआ। वे अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे, वे मूर्ति पूजा करने लगे और इसकी जड़ें मीका के परिवार में थी। उसकी माँ ने उसे पद भ्रष्ट किया। मीका ने जिस याजक को वेतन पर रखा था उसकी मूर्तियों को संभालने के लिए उसी याजक ने दान को स्वार्थपूर्ण योजना सुझाई। यह एक भाड़े के प्रचारक की मीठी बातों का परिणाम था। आइए अब हम देखते हैं एप्रेम में मूर्ति पूजा। न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे जिनके विषय में तूने मेरे सुनते ही श्राप दिया था, वे मेरे पास हैं, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष होवे। मेरे प्रियो, मीका एक बिगड़ी संतान का उदाहरण है। वह माँ का लाडला था। वह जानता था कि उसकी माँ ने कुछ पैसा बचा कर रखा है। उसने वह पैसा चुरा लिया। उसकी माँ ने अनजाने में चोर को श्राप दे दिया, अतः उसने अपना चोरी का अपराध स्वीकार किया। उसकी माँ ने उसे दंड देने की अपेक्षा उसे सराहा और उसे आशीष दी, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। मेरे प्रियो, तब हम आगे पढ़ते हैं न्यायों 17 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए, सो अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब मीका ने अपनी माँ को वह पैसा लौटा दिया तब उसकी माँ ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। यहाँ पर देखिए कि मूर्ति पूजा में ये लोग लग गए, अतः वह उसे पैसा लौटा देती है। मित्रों, आज अनेक विश्वासी ऐसे ही अस्थिर हैं। वह यहोवा को रुपया अर्पित कर रही थी परंतु उससे मूर्तियां बनवा रही थी। आज अनेक कलीसियाओं में परमेश्वर के नाम से चंदा लिया जाता है और उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे कहते तो हैं कि चंदा परमेश्वर को समर्पित करें परंतु उससे विलासिता की पूजा की जाती है। हम न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय उसके 5 से 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वह वही किया करता था। मित्रों, मीका के घर में एक देवालय था। मीका की माँ ने मूर्तियां बनवाने के लिए चांदी दी थी और मीका ने वेदी बनवाई थी। उसने एक एपोद और अनेक देवता बनवाए और उस वेदी का श्रृंगार पूरा किया। इसके अतिरिक्त उसने अपने एक पुत्र का अभिषेक करके उसे पुजारी भी बना दिया। बात वही थी, जिसे जो ठीक जान पड़ता था वह वही किया करता था। हम न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 से 10 पद में पढ़ते हैं, यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बेतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं तो यहूदा के बेतलहम से आया हुआ एक लेवीय हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रह कर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपए और 1 जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवीय भीतर गया। मेरे मित्रों, अपने पुत्र को याजक बनाने पर मीका के मन में शांति नहीं थी। अतः जब उसकी भेंट भ्रमणशील एक प्रचारक अर्थात लेवी से हुई तब उसने वेतन देकर उसे काम पर रख लिया। यह बैतलहम वासी यहूदा का लेवी उसका नीति या पारिवारिक याजक बन गया। यह याजक आज के भाड़े के प्रचारकों के नाई था। परमेश्वर ऐसे प्रचारकों की कलीसिया पर दया करे। वह लेवी अब याजक बन गया था और उस परिवार में मूर्तियां भी अनेक थी। हम न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है। मेरे प्रियो, यह अध्याय इसराइल की आत्मिक दुर्दशा को प्रकट करता है। यहाँ एक मनुष्य है जो सोचता है कि उसके पास एक लेवी याजक तो है, अब उसे कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति कैसे त्रासदीपूर्ण होती है। आज कितने मनुष्य ऐसी मानसिकता को रखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। दान में मूर्ति पूजा। दान के गोत्र को वह भूभाग मिला था जिस पर शक्तिशाली पलिस्तियों का अधिकार था। वे निवास के लिए और अधिक स्थान चाहते थे, और उस समय इसराइल में राजा नहीं था, चारों ओर अव्यवस्था थी और उनका कोई भी अगुआ नहीं था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यायों की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 पद में। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा ना था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भूभाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसराइली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। मेरे प्रियो, आपको यहोशू के पुस्तक का अध्ययन स्मरण होगा कि किसी भी गोत्र ने अपने भाग में आए भूभाग पर संपूर्ण अधिकार नहीं किया था। यह उत्तर में दान गोत्र के विषय सही था। दान गोत्र की समस्या बड़ी थी, अतः वे पहाड़ों की ओर चले गए। हम न्यायों के पुस्तक 18 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं। तब दानियों ने अपने सब कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में देखभाल करो। इसलिए वे एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। ध्यान दीजिए कि ये पुरुष सर्वेक्षण कर रहे थे कि अपनी सीमाओं को फैलाने के लिए किस ओर बढ़ें। अपनी यात्रा के मध्य में वे मीका के घर पहुंचे। तब हम न्यायों 18 अध्याय के 3 और 4 पद में पढ़ते हैं। जब वे मीका के घर के पास आए तब जवान लेवी का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है। उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। मेरे मित्रों, यह याजक मात्र एक भाड़े का प्रचारक था। परमेश्वर ऐसी कलीसिया पर दया करे जहां भाड़े का प्रचारक हो, जो मात्र एक संदेशवाहक हो और बिना पश्चात, बिना भय, बिना समझौते के वचन का प्रचार न करता हो। उस लेवी ने समझौता कर लिया। वह युग समझौते, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का युग था, और ये चिन्ह ईश्वर त्याग के हैं। समय चाहे कैसा भी हो, हम आज भी ईश्वर त्याग के युग में हैं। कलीसिया ने भी समझौता कर लिया है, वह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की दशा में है। हमारी समस्या यह है कि कलीसिया अपने अधिकार को ग्रहण नहीं कर रही है, अर्थात परमेश्वर के वचन को और उसमें प्रकट मसीह को स्वीकार नहीं कर रही है। हम न्यायों की पुस्तक 18 अध्याय के 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम कर रहे हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के सामने है। मेरे प्रियो, यह भाड़े के प्रचारक के मधुर वचन है। वह मनुष्यों को अच्छे लगने वाले वचन ही सुनाता है। उन पांचों पुरुषों ने सोचा कि उस याजक ने जो कहा है वह बहुत ही शुभ है। हम 18 अध्याय के 9 से 11 पद में आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा है कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो, वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहां से अर्थात सोरा और एस्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांध कर प्रस्थान किया। मित्रों ध्यान दीजिए, वे भेदिए एक अच्छा समाचार लाए कि लैस एक अच्छा स्थान है जिस पर अधिकार करना चाहिए। अतः 600 योद्धाओं का एक जत्था अपने घर परिवार के साथ निकल पड़ा। मार्ग में वे मीका के घर पर रुके और उसकी मूर्तियों तथा याजक को ले गए। उन्होंने लैस आकर उसे ध्वस्त किया और उसका पुनः निर्माण करके वहां बस गए। उन्होंने उस नगर का नाम बदलकर दान रखा। तब हम न्यायियों 18 अध्याय के 30 और 31 पद में आगे देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेरशोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। मित्रों, यह धर्म त्याग का दृश्य है। उन्होंने मूसा के पोते योनातान को याजक बनाया और मूर्ति पूजा करते हुए परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। आपको याद होगा कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 और 4 पद में मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा इसराइल को सुनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। और यहाँ देखिए, मूसा का पोता मूर्तियों का पुजारी बना हुआ है। यह कैसी त्रासदी है। मेरे मित्रों, जब मैं सेवा काल में बढ़ रहा था, तब मैंने कलीसिया में देखा जिसे मैं देखकर अचंभित हुआ। क्योंकि मैं कलीसिया में बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए कलीसिया मेरे लिए एक नया संसार और एक नया जीवन था। मैं अपने पादरी साहब से अति प्रभावित हुआ था और उसे परमेश्वर का पवित्र जन मानता था, और वह था भी। एक पुरुष जो उसे और उसके परिवार को जानता था, उसने मुझे बताया कि उसका एक पुत्र अति स्वतंत्र विचारों वाले एक संस्थान में अधिकारी पद पर है। उन आरंभिक दिनों में मुझे इस बात को सुनकर बहुत अधिक दुख हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये परमेश्वर के दास का पुत्र परमेश्वर के वचन और सुसमाचार से दूर रहकर कैसे अपने जीवन को बिता सकता है। मेरे मित्रों, ईश्वर त्याग एक भयानक बात है, और इसी के कारण किसी भी राष्ट्र में समस्या उत्पन्न होती है। इसराइल के साथ भी यही हुआ था। यहाँ मूसा का पोता मीका की मूर्तियों का पुजारी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं अध्याय 19 में, जहाँ पर अनैतिकता की अति है। जैसा हम देख चुके हैं कि मनुष्य का पतन ईश्वर त्याग से आरंभ होता है और अगले चरण अनैतिकता पर आता है, जो इस पुस्तक के अंत में सजीव घटना द्वारा व्यक्त किया गया है। इस घटना का केंद्र बिन्यामीन का गोत्र है। उनकी भीषण अनैतिकता के कारण इसराइल में गृह युद्ध छिड़ गया, और इसका मूल कारण था बिन्यामीन के सदस्यों द्वारा लेवी की रखेल के साथ दुष्कर्म करना और उसकी हत्या। मेरे मित्रों, अन्य गोत्रों ने एक संगठित होकर बिन्यामीन के गोत्र का नाश करना चाहा। इसके साथ ही राष्ट्र पूर्ण रूप से भ्रष्ट और अव्यवस्थित हो गया। न्यायों की पुस्तक का अंतिम पद है, जहां पर हम पाते हैं न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय के 25 पद में, उन दिनों में इसराइल का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह काम करता था। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, उन दिनों में जब इसराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहम में की एक सुरेतीन रख ली थी। उसकी सुरेतीन व्यभिचार करके यहूदा की बेतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। ध्यान दीजिए, ये 2 पद उस युग के इसराइल वंशियों की जीवन शैली प्रकट करती है, जो रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 से 3 का अच्छा उदाहरण है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लेवी ऐसी स्त्री से विवाह करेगा? उसने उस स्त्री से विवाह किया और वह स्त्री व्यभिचार करने लगी। अंत में वह अपने पिता के घर चली गई। वह अपनी पत्नी के पीछे उसके घर गया। उसके ससुर ने उसका उत्तम सत्कार किया। वह कुछ दिन वहां ठहरा। अब वे अपने घर के लिए चल पड़े। मार्ग में वे गिबा से होकर जा रहे थे। गिबा बिन्यामीन का एक नगर था। उन्होंने वहां ठहरना उचित समझा। वहां एक एप्रेमी प्रवास कर रहा था। उसने उन्हें अपने घर लाकर ठहराया। रात में जब वह उनकी सेवा ही कर रहा था, तब कुछ लुच्चों ने आकर सदोम की नाई उस अतिथि के साथ में समलैंगिक संबंध बनाने की इच्छा को रखा। उसे बाहर लाने के लिए आग्रह करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उस अपनी रखेल को वह बाहर कर दिया। उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और परिणाम स्वरूप वह स्त्री मर गई। या आज की सी घटना लगती है। इस अध्याय को पढ़ने से ज्ञात होता है कि आज के समाज में और उन लोगों में कितनी समानता है। मेरे मित्रों, वह लेवी अत्यधिक उत्तेजित हुआ और उस मृतक स्त्री के 12 टुकड़े करके सब गोत्रों में भेज दिए और उस अधम घटना का वर्णन किया। इससे प्रकट है कि उनका नैतिक स्तर कितना गिर चुका था। इस दुर्व्यवहार के प्रति अन्य गोत्रों की प्रतिक्रिया अग्रिम दो अध्यायों में व्यक्त है, अध्याय 20 और 21 में। मित्रों, राजनीतिक अव्यवस्था थी, राष्ट्र ईश्वर त्याग, भयानक अनैतिकता के बाद अगला चरण है। राजनीतिक अव्यवस्था यह न्यायों की पुस्तक के अंतिम दो अध्याय वर्णन करते हैं। उस स्त्री के भंग किए हुए अंग पाकर और गीबा की इस दुर्घटना को सुनकर इसराइल के गोत्र बिन्यामिनों पर अति क्रोधित हुए। उन्होंने व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया और वे हमसे अच्छे ही थे, हम तो नियमों को कम से कम कर देना चाहते हैं। उन्होंने बिन्यामिन से अपराधियों की मांग की, परंतु उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार सब गोत्र एकत्र हो बिन्यामिन से लड़ने गए। हम न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक और दो पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब दान से लेकर बर्शेबा तक के सब इसराइली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इसराइली गोत्रों के लोग जो 400,000 तलवार चलाने वाले प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। मेरे मित्रों, बिन्यामिन के पास शक्तिशाली सेना थी। यहाँ हमें बड़ी रोचक बात बताई जा रही है, आइए हम आगे पढ़ें। 20 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, इन सब लोगों में से 772 चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। मेरे मित्रों, एक बार मैंने एक स्वतंत्र विचारक को 15 मिनट प्रचार करते सुना कि दाऊद का निशान गोलियत के ठीक माथे पर नहीं लगा। इस पद पर ध्यान दीजिए, गोफन से उनका निशाना वैसा ही अचूक था जैसा आज मिसाइल का होता है। उनके निशाने से बचना वैरी के लिए बहुत ही कठिन होता था। ये बाएं हाथ से गोफन चलाने वाले बाल भर भी निशाना लगाने से नहीं चूकते थे। इस प्रचारक का कहना था कि दाऊद ने 5 पत्थर इसलिए उठाए थे कि यदि पहली बार उसका निशाना चूक जाए तो वह दूसरी बार निशाना लगाएगा। वह गलत था। मेरे मित्रों, दाऊद ने 5 पत्थर इसलिए चुने थे कि गोलियत के 4 पुत्र भी सेना में थे। हर एक के लिए दाऊद के पास एक पत्थर था। दाऊद को अपने निशाने पर पूरा भरोसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिन्यामिन के पुरुष संख्या में कम पड़ गए, वरन सच तो यह है कि उनका सर्वनाश ही हो गया था। हम न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय उसके 44 से 46 पद में पढ़ते हैं, और बिन्यामिनियों में से 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में कि रिमोन नाम चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इसराइलियों ने उनमें से 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष को मार डाले। तब बिन्यामिनियों में से जो उन दिनों में मारे गए थे वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और ये सब शूरवीर थे। मेरे मित्रों, बिन्यामिन के गोत्र को उनकी अनैतिकता का दंड मिला। अनेक पुरुष की मृत्यु होना कैसी त्रासदी थी। वह एक प्रिय गोत्र था। आपको याद होगा कि बिन्यामिन याकूब का सबसे छोटा और अति प्रिय पुत्र था। बिन्यामिन के लिए यहूदा अपनी जान देने को तैयार था। उसका स्थान यहूदा के निकट था। इस घोर अनैतिकता के कारण गोत्र एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। और फिर क्या हुआ? राजनीतिक अराजकता, पहले मंदिर में ईश्वर त्याग, उसके बाद समाज में अनैतिकता और अंत में राजनीतिक अव्यवस्था। यह किसी भी पतित होने वाले राष्ट्र के पतन के चरण है। न्यायों की पुस्तक का अंतिम अध्याय इसराइल के खोए हुए गोत्र के लिए विलाप और भविष्य के प्रावधान का उल्लेख करता है। मेरे मित्रों, अब बिन्यामिनों का संहार एक नई समस्या खड़ी कर देता है। लगभग पूरा ही बिन्यामिन गोत्र नष्ट हो गया था और इसराइल ने शपथ खाई थी कि बचे हुए बिन्यामिनों को भी वे अपने पुत्रियां विवाह में नहीं देंगे। अब समस्या यह थी कि उस गोत्र को सुरक्षित रखना या संरक्षित कैसे किया जाए। युद्ध से पूर्व इसराइलियों ने यह शपथ खाई थी कि इस युद्ध में सहभागी न होने वाले को जान से मार दिया जाए, और उन्हें पता चला कि गिलादी वंश से एक भी पुरुष युद्ध में नहीं था। अतः उन्होंने इसराइल के 12,000 योद्धाओं को आज्ञा दी कि गिलादी यावेश में सबको नष्ट कर दिया जाए और कुंवारियों को शीलो की छावनी में लाया जाए। ये कुंवारियां संख्या में 400 थी, अतः उनका विवाह बिन्यामिनी युवकों से करवा लिया गया। बचे हुए बिन्यामिनी युवकों के लिए भी पत्नियों की व्यवस्था की गई। युद्ध में ध्वस्त इमारतों के पुनरुद्धार की व्यवस्था भी की गई थी। मेरे मित्रों, यह युग राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के साथ समाप्त हुआ। अंतिम पद न्यायों की पुस्तक की कहानी का दुखी अंत करता है। हम न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। मेरे मित्रों, आज समस्या की जड़ क्या है? क्योंकि हमारी समस्या मुख्य रूप से आत्मिक है, इसलिए इसकी जड़ कलीसिया में है। इसके बाद परिवार, नशा और पीढ़ियों में दूरी और ये समस्याएं राजनीति में प्रवेश करती है, तब अराजकता आती है। लोग कहते हैं, यहाँ बदलाव लाओ, वहां बदलाव लाओ, इस पार्टी को लाओ और उस पार्टी को लाओ, तब सब ठीक हो जाएगा। परंतु यह सब मूर्खता है। हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मिक आधार पर लौट आए। वहीं से हम पथ भ्रष्ट हुए थे और समस्याओं का आरंभ ही वहीं हुआ था। न्यायों की पुस्तक में हमने इतिहास का नीति शास्त्र देखा है। इतिहास का चक्र अब भी चल रहा है। स्पष्ट कहूं तो मेरी चिंता का कारण है कि बदलाव नहीं आया है। आज हम राजनीतिक अव्यवस्था में है। परमेश्वर हम पर दया करे कि हम इन बातों को समझे, इन बातों को सीखें और इन इसराइलियों की इन घटनाओं के द्वारा अपने जीवन में एक सबक लें। मेरे मित्र, क्या आज ऐसी ही अराजकता में, राजनीतिक अव्यवस्था में, आपके भ्रष्टाचार में आप फंसे हुए हैं? यदि ऐसा है तो आज हम अपने प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख आएं और उससे अपने जीवन को अर्पण करें, ताकि हम फिर से एक नया जीवन और आशीष को प्राप्त कर सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ न्यायों की पुस्तक भी समाप्त होती है। इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको और अधिक बलवंत करे। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।